नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत और फिनलैंड ने पर्यावरण, सहयोग, प्रवासन और गतिशीलता सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत और फिनलैंड इस बात पर सहमत हैं कि केवल सैन्य संघर्ष से किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं हो सकता। बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड अध्यक्ष नीतीश कुमार ने राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया। नेपाल में शांतिपूर्ण मतदान जारी। ईरान ने अमरीका और इसराइल के संयुक्त सैन्य हमलों के बीच ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 का 19वां चरण शुरू किया। इसराइल के दिमोना परमाणु संयंत्र को निशाना बनाने की चेतावनी दी। और आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप के सेमीफाइनल में आज शाम भारत का सामना इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। भारत और फिनलैंड के बीच आज नई दिल्ली में पर्यावरण, सहयोग, प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी तथा सांख्यिकी सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टुब के साथ कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। उन्होंने बहुपक्षीय मंचों में सहयोग सहित पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए। संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज दुनिया अस्थिरता और अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है।
आज विश्व एक अस्थिरता और अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है। ऐसे ग्लोबल एनवायरनमेंट में भारत और यूरोप, दुनिया की दो बड़ी डिप्लोमेटिक पावर्स, अपने संबंधों के सुनहरे दौर में प्रवेश कर रहे हैं। हमारा बढ़ता सहयोग वैश्विक स्थिरता, विकास और साझा समृद्धि को नई मजबूती दे रहा है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और फिनलैंड इस बात पर सहमत हैं कि केवल सैन्य संघर्ष से किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि भारत और फिनलैंड कानून के शासन, संवाद और कूटनीति में विश्वास रखते हैं। श्री मोदी ने उल्लेख किया कि भारत यूरोपीय संघ के बीच ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते से भारत और फिनलैंड के बीच व्यापार, निवेश तथा तकनीकी सहयोग और मजबूत होगा।
2026 की शुरुआत में ऐतिहासिक भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ। ये एग्रीमेंट भारत और फिनलैंड के बीच ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी सहयोग को और प्रबल करेगा। डिजिटल टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबिलिटी जैसे क्षेत्रों में भारत और फिनलैंड महत्वपूर्ण साझेदार हैं।
फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टुब ने कहा कि भारत विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्रों में से एक है और विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
मुझे कहना होगा कि जब आप यह कहते हैं कि आप यहां दो बड़ी लोकतांत्रिक देशों के रूप में खड़े हैं, तो मैं आपकी कूटनीतिक क्षमता को सलाम करता हूं। इसका मुख्य संदेश है कि हम समान मूल्यों को साझा करते हैं। मैं आपके नेतृत्व के लिए आपको बधाई भी देना चाहूंगा। भारत स्पष्ट रूप से दुनिया के सबसे बड़े और सबसे प्रभावशाली देशों में से एक है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। अब भारत यूरोप का एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार बन चुका है।
फिनलैंड के राष्ट्रपति 4 दिन की राजकीय यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे। वे राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। वे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से भी मिलेंगे। राष्ट्रपति स्तूप आज शाम राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित होने वाले 11वें रायसीना डायलॉग 2026 में मुख्य अतिथि और प्रमुख वक्ता के रूप में शामिल होंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज सुबह नई दिल्ली में राष्ट्रपति स्तूप से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि फिनलैंड के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात से भारत फिनलैंड संबंध और मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में 11वें रायसीना डायलॉग का उद्घाटन करेंगे। रायसीना डायलॉग भू राजनीति और भू अर्थव्यवस्था पर भारत का प्रमुख सम्मेलन है, जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने आने वाली सबसे चुनौतीपूर्ण समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
रायसीना डायलॉग भारत का एक प्रमुख सम्मेलन है जो साल 2016 से हर वर्ष नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है। 3 दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन के दौरान 110 देशों के लगभग 2700 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। इनमें मंत्री, पूर्व राष्ट्राध्यक्ष और पूर्व सरकार के प्रमुख, सांसद, सैन्य कमांडर और उद्योग जगत के प्रमुख लोग शामिल होंगे। संवाद के दौरान प्रतिभागी 6 प्रमुख विषयों पर अलग अलग सत्र में चर्चा करेंगे। इस सम्मेलन में वैश्विक नेता, नीति निर्माता और विशेषज्ञ अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों और रणनीति सहयोग जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
रायसीना डायलॉग 2026 के 11वें संस्करणों में भाग लेने के लिए श्रीलंका के विदेश मंत्री विजिथा हिरथ आज नई दिल्ली पहुंचे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और श्रीलंका के बीच घनिष्ठ और बहुआयामी साझेदारी है जो आपसी संबंधों पर गहराई से आधारित है। सेशल्स के विदेश मंत्री बैरी फौरे और मॉरिशस के विदेश मामलों, क्षेत्रीय एकीकरण और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री धनंजय रामफुल भी रायसीना डायलॉग में भाग लेने के लिए भारत पहुंच चुके हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड अध्यक्ष नीतीश कुमार ने आज राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन पटना स्थित बिहार विधानसभा में सचिव के समक्ष दाखिल किया गया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में राज्यसभा चुनाव के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की थी। एक रिपोर्ट।
मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि संसदीय जीवन की शुरुआत से ही उनके मन में यह इच्छा रही है कि वह बिहार विधानसभा और विधान परिषद के साथ साथ संसद के दोनों सदनों के भी सदस्य बने। इसी क्रम में वे अब राज्यसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इधर मुख्यमंत्री के राज्यसभा जाने की खबर से जदयू कार्यकर्ताओं में नाराजगी भी देखने को मिली। वहीं इन राजनीतिक हलचलों के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार विधानसभा में आयोजित नामांकन कार्यक्रम में भाग लेंगे। आशीष रंजन, आकाशवाणी समाचार, पटना।
10 राज्यों में 37 राज्यसभा सीटों के लिए नामांकन दाखिल करने की आज अंतिम तारीख है। नामांकन पत्रों की जांच कल की जाएगी। उम्मीदवार 9 मार्च तक नाम वापस ले सकते हैं। इन सीटों के लिए मतदान 16 मार्च को होगा और परिणाम उसी दिन घोषित कर दिए जाएंगे। महाराष्ट्र के 7, तमिलनाडु की 6, बिहार और पश्चिम बंगाल की 5-5, ओडिशा की 4, असम की 3, जबकि तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और हरियाणा में 2-2 सीटें तथा हिमाचल प्रदेश की 1 सीट के लिए मतदान होगा। इस बीच कांग्रेस ने राज्यसभा के लिए 6 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में 4 डिजिटल उपकरणों का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने वर्ष 2027 की जनगणना के लिए महिलाओं और पुरुषों के प्रत्येक शुभंकर प्रगति और विकास का औपचारिक अनावरण किया। इन उपकरणों में हाउस लिस्टिंग ब्लॉक क्रिएटर वेब एप्लीकेशन, HLO मोबाइल एप्लीकेशन, स्वगणना पोर्टल और जनगणना प्रबंधन तथा निगरानी प्रणाली पोर्टल शामिल हैं। गृह मंत्रालय ने कहा कि उन्नत कंप्यूटिंग विकास केंद्र ने देश भर में गणना कार्यों को सुगम बनाने के लिए यह उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किए हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार संजय भाटिया ने आज हरियाणा में राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद थे। पानीपत निवासी संजय भाटिया को संगठनात्मक राजनीति का लंबा अनुभव है। कांग्रेस ने करमवीर सिंह बौद्ध को राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है। भारत ने डिजिटल समावेशन के लिए उपकरणों और सेवाओं के उपयोग में अंतर को कम करने और उनकी किफायती उपलब्धता सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। स्पेन के बार्सिलोना में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ये बात कही।
आखिरी 5वां स्तंभ जो पहले 3 स्तंभों से निकल कर आता है वह है लागत को कम करने की क्षमता। 10 साल पहले भारत में 1 GB डेटा की कीमत लगभग $3 होती थी। आज भारत में 1 GB डेटा की कीमत सिर्फ 9 सेंट है। हमने इस लागत को 97% तक कम किया है।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। नेपाल में शांतिपूर्ण मतदान जारी है। प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने अपना वोट डालने के बाद पत्रकारों से बातचीत में चुनाव के उत्साहपूर्ण संचालन पर प्रसन्नता व्यक्त की। अन्य राजनीतिक नेताओं में राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी आरएसपी के रवि लामिछाने ने चूचे पार्टी में और आरएसपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बालिन ने तिनकुने में अपना वोट डाला। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
आज नेपाल में दोपहर तक 18% मतदान हुआ। पूरे नेपाल में कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण ढंग से मतदान चल रहा है। प्रत्येक मतदाता को दो मतपत्र मिल रहे हैं। पहला मतपत्र फर्स्ट पास द पोस्ट चुनाव के लिए है और दूसरा मतपत्र आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के लिए दिया जा रहा है। फर्स्ट पास द पोस्ट प्रणाली के माध्यम से मतदाता अपने निर्वाचन क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए उम्मीदवार को चुनते हैं और प्रोपोर्शनल प्रणाली के तहत मतदाता उस राजनीतिक दल पर मुहर लगाते हैं जिसको वो देश के केंद्र में नेतृत्व करते हुए देखना चाहते हैं। श्वेता सिंह, आकाशवाणी समाचार, काठमांडू।
ईरान ने कहा है कि अगर इसराइल और अमेरिका ईरान के शासन को समाप्त करने की कोशिश करते हैं तो इसराइल के दिमोना परमाणु संयंत्र को निशाना बनाएगा। एक रिपोर्ट।
ईरान की ये चेतावनी इसराइल के विदेश मंत्री इसराइल कार्ड्स के उस बयान के बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान के नए सर्वोच्च नेता इसराइल के निशाने पर होंगे। ईरान ने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के 19वें चरण के तहत मिसाइल और ड्रोन हमले तेज कर दिए हैं। इसराइली रक्षा बलों ने कहा कि ईरान से इसराइल की ओर कई मिसाइलें दागी गईं। इसराइली रक्षा बलों का कहना है कि उसके रक्षा तंत्र खतरे को रोकने के लिए काम कर रहे हैं और गृह मोर्चा कमान से संबंधित क्षेत्रों में मोबाइल फोन पर सीधे प्रारंभिक निर्देश जारी किए गए हैं। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
इस बीच पश्चिम एशिया में संघर्ष और तेज हो गया है। इजरायली रक्षा बलों ने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल बेड़े से जुड़े कई ठिकानों को नष्ट करने का दावा किया है। अमरीकी वायुसेना ईरान पर लगातार भारी हवाई हमले कर रही है। अमरीकी केंद्रीय कमान ने कहा कि उनके बलों ने 20 से अधिक ईरानी जहाजों को नष्ट कर दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ युद्ध में अमेरिका और इसराइल मजबूत स्थिति में है।
हमारी स्थिति मजबूत है और उनका नेतृत्व तेजी से खत्म हो रहा है। मैं कह सकता हूं कि ये जबरदस्त प्रगति है। उनकी मिसाइलें तेजी से नष्ट की जा रही हैं, उनके लॉन्च सिस्टम भी खत्म किए जा रहे हैं। वे अपने पड़ोसियों पर हमला कर रहे हैं, कुछ मामलों में वे अपने सहयोगियों पर भी हमला कर रहे हैं।
इसराइल की वायुसेना ने ईरान पर फिर हमले किए। इसराइल के रक्षा बलों ने तेहरान में ईरानी शासन के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया। इससे पहले इसराइल की वायुसेना ने ईरान के इस्फहान और काम में मिसाइल लॉन्चर और रक्षा प्रणाली पर हमला किया था। इसराइल ने लेबनान में कई कमान केंद्रों पर भी हमले किए। उसका कहना है कि इनमें से एक केंद्र का इस्तेमाल हिजबुल्ला की वायु इकाई कर रही थी। श्रीलंका की नौसेना ने ईरान के नौसेना पोत आयरिस देना के 84 नाविकों के शव बरामद कर लिए हैं। ये पोत श्रीलंका के दक्षिण में समुद्र में अमरीकी पनडुब्बी हमले के बाद डूब गया था। ये घटना हिंद महासागर में श्रीलंका की समुद्री सीमा से परे अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में घटी। नौसेना अधिकारियों ने बताया है कि लापता लोगों की तलाश के लिए खोज अभियान जारी है। इस बीच श्रीलंका की सरकार ने कहा है कि उसकी समुद्र सीमा के पास एक और ईरान के पोत का पता चला है, लेकिन यह उसके जल क्षेत्र में मौजूद नहीं है। कैबिनेट प्रवक्ता और मंत्री डॉ नलिंदा जयतिस्मा ने आज संसद को बताया कि यह पोत वर्तमान में श्रीलंका की समुद्र सीमा के निकट विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज कर्नाटक के बेलगावी जिले के चिक्कोडी तालुक के यदूर स्थित वीरभद्रेश्वर मंदिर के जीर्णोद्धार किए गए राजगोपुरा का उद्घाटन किया। उन्होंने मंदिर में भगवान शिव के महाकुंभ अभिषेक में भी भाग लिया। आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला आज भारत और इंग्लैंड के बीच होगा। ये मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। पहले सेमीफाइनल में कल रात न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हरा दिया। मौसम विभाग के अनुसार कोंकण, गुजरात और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में कल तक गर्म और उमस भरा मौसम रहेगा। इस सप्ताह उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से 4 से 6 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहने की संभावना है। अगले 4 दिन में देश के मध्य भागों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की उम्मीद है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और फिनलैंड ने पर्यावरण, सहयोग, प्रवासन और गतिशीलता सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत और फिनलैंड इस बात पर सहमत हैं कि केवल सैन्य संघर्ष से किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं हो सकता। बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड अध्यक्ष नीतीश कुमार ने राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया। नेपाल में शांतिपूर्ण मतदान जारी। ईरान ने अमेरिका और इसराइल के संयुक्त सैन्य हमलों के बीच ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 का 19वां चरण शुरू किया। इसराइल के दिमोना परमाणु संयंत्र को निशाना बनाने की चेतावनी दी। और ICC T20 क्रिकेट विश्व कप के सेमीफाइनल में आज शाम भारत का सामना इंग्लैंड से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।